नियमसार कारण कार्य नियम पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमिऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदं सणसहावम् वोच्छामीनियमसारं केवली सुदकेवली वणिदम् श्री कुंदकुंद आचार्य ने इस नियमसार ग्रंथ की रचना की है और उनके पश्चात पद्म प्रभु मलधारी देव ने इस पर टीका लिखी है और गुरुदेव श्री ने उस पर प्रवचन दिए हैं। ये जो प्रवचन है इसका नाम रखा है उन्होंने कारण कार्य नियम और उस पुस्तक रूप से छप के आई है। तो ये पहली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 104 पर हम आ गए 104। देखिए यहाँ नियम सार शब्द का अर्थ देखते हैं। नियम का अर्थ यहाँ है समय दर्शन ज्ञान चारित्र को यहाँ नियम कहा और उसमें सार शब्द क्यों लगाया, तो जो व्यवहार से समय दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में आता है उसका निषेध करने के लिए नियम सार कह दिया। और ये नियम सार यानी जो शुद्ध रत्नत्रय है वो मोक्ष का उपाय है, इसकी बात अपनी यहाँ चल रही थी। अब यहाँ बात ये हो रही थी कि व्यवहार से समय दर्शन किसको कहते हैं, तो आप्त आगम और तत्व की श्रद्धा। आप्त कहने से अरिहंत भगवान है, आगम उनका बताया हुआ जो उनके दिव्य ध्वनि में जो बात आई है और उसके द्वारा जो शास्त्रों की रचना हुई है वो है आगम, और तत्व जो पदार्थ है उसका जो स्वरूप बताया उसको तत्व कहते हैं। उसमें सबसे पहले आप्त की बात हो रही थी यहाँ पर कि जो आप्त जो है सर्वज्ञ भगवान वो कैसे है, तो 18 दोषों से रहित है। वो 18 दोष कौन कौन से है उसकी यहाँ अपनी बात चल रही थी। यहाँ बात पहले हम देख लेते हैं उसके नाम और फिर अपना जहाँ से विषय शुरू है वहाँ से पढ़ेंगे हम। हाँ 101 पेज पर ये जो पहले उसके पहले भी गाथा हाँ उसके पहले आया था पेज नंबर 98 लास्ट लाइन ये जो लिखा है हम केवल वो गुजराती गुजराती पढ़ेंगे। क्षुधा तृषा भय रोष यानी क्रोध राग मोह चिंता। चिंता का अर्थ क्या देखा था हमने, वो आत्रा रौद्र ध्यान या शुक्ल धर्म ध्यान भी उसको भी लिया था। जरा यानी बुढ़ापा रोग मृत्यु स्वेद जन्म भी यहाँ लेना है हाँ पर से वो खेद मद रति विस्मय निद्रा उन्होंने जन्म बाद में लिखा यहाँ जन्म और उद्वेग ये सारे दोषों के नाम यहाँ बताए हैं। अब उस संबंधी जो कुछ अपनी विशेष बातें प्रवचन में आ रही थी अब आते हैं हम 104 नंबर के पृष्ठ पर। अब जो राग के संबंधी बात बता रहे कि पांचवा पॉइंट जो है दोषों का वर्णन चल रहा है जो दोष अरिहंतों में नहीं होते उसकी चर्चा चल रही है। राग राग कहने से शुभ राग और अशुभ राग दोनों लेना है, तो शुभ राग को प्रशस्त राग कहते हैं और अशुभ राग को अप्रशस्त राग कहते हैं। तो ये बेचे रागना बे प्रकार एक शुभ अनेक अशुभ दान शील उपवास तथा गुरुजनों की वैयावृत्य वगैरह में उत्पन्न थतो ते प्रशस्त राग छे। देखो इसमें ये क्रिया जो बात है वो अलग है, और वो दान देने का परिणाम, शील के परिणाम, उपवास के परिणाम, वो परिणाम है, वो शुभ राग है। जीव तो इसी को धर्म मान के बैठे अनादि से। कहीं पर भी जाओ तो ये क्रियाओं को ही धर्म समझा जाता है, भले वो क्रिया में परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए भी ये दान आदि किए जाते हैं, या आपस का देखा देखे भी उपवास आदि करते हैं, परंतु हाँ उसमें धर्म मान कर कर रहे। कहते राग भगवान ने होतो नथी, जो आ दान शील अपवास तथा गुरुजनों नी वैयावृत्य एमा उत्पन्न थतो पुण्य भाव छे। तो पुण्य भाव राग, राग समझानो काय, दान नो भाव ए पुण्य छे, धर्म नहीं। शील एटले शरीर नु शील, ब्रह्मचर्य पाळवू शुभराग छे, अपवास करवो शुभराग छे, अने गुरुजनोनी धर्मात्माओनी वैयावृत्य तेनाथी उत्पन्न थतो प्रशस्त राग ते भगवान ने होतो नथी। अरिहंतों को कोई यहाँ शुभराग, क्योंकि वो तो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, उनके कोई इच्छा ही नहीं है। किसी ने हमको प्रश्न पूछा था कि अरिहंत भगवान सिद्धों का जप करते होगे या सिद्धों का अरिहंत भगवान सिद्धों को वंदन करते होगे कि नहीं, आप बताओ।
नहीं।
ना, क्यों नहीं? ऐसा है, वो पूर्ण वीतराग है। नमस्कार करने का भाव ये कैसा है, शुभ भाव है, और वो कहाँ तक होगा, वो तो छठे गुण स्थान तक होगा, आगे तो स्वरूप में लीन अवस्था है। ख्याल में आई बात?
तो सभी केवल यानी अभी क्या कर
रहे हैं? सभी केवल यानी अपने अनंत आनंद का उपभोग ले रहे हैं।
जो बाहर आता ही नहीं होगा,
बाहर अंदर कुछ है ही नहीं है, हमारा भी उपयोग बाहर जाता है ना, क्या हमारा लक्ष्य बाहर जाता है, उपयोग तो आत्मा की पर्याय है। देखो देखो अभी ऐसा सोचना क्या करते होगे, बोलो आप ही क्या करते होगे, उनकी जो अनंत गुणों की पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है,
ज्ञान
बिल्कुल। अभी स्थिर होने की बात, आपके लिए स्थिर होना है, अन्य का उपयोग छोड़कर अपने स्वरूप में स्थिर होना, उनके लिए पूरा उपयोग सभी त्रिकालवर्ती सभी चीजों को जानने में उनका उपयोग है। कहीं से हटा और कहीं लगा और स्थिर हो, ये बात उनके लिए नहीं होती है, ये स्थिरता की बात हमारे आपके लिए है, सूक्ष्म ज्ञानी की, क्योंकि उसका उपयोग एक जगह से हटाकर एक जगह लगाया। ऐसा कहते केवल ज्ञानी को ध्यान भी नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो ध्यान का फल है, ध्यान के फल में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ध्यान का ध्यान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, यानी एक ही विषय पर लक्ष्य केंद्रित करना, उपयोग केंद्रित करना। अभी उनको अगर एक ही, अभी उनके उपयोग में कितनी बातें आ रही हैं, सभी अनंत द्रव्य, यानी छह द्रव्य जाति अपेक्षा, उसकी सभी गुण अनंत गुण, उसके अनंत पर्याय, उसके अविभाग प्रतिच्छेद, और सब युगपद एक समय में ज्ञान में आ रहा है। तो उपयोग हटा और कहीं लगाओ ये बात ही नहीं है उनकी, ख्याल में है ना, स्व पर सब उपयोग रूप है। आप कहेंगे हमें तो अब पर को जानने का निषेध करते हैं, पर को जानते तो राग होता है, परंतु वो कैसे जानते हैं, वीतरागता से जानते हैं। पर को जानने में दोष नहीं है, परंतु यहाँ जो नीचे की भूमिकाओं में पर को जानने नहीं या अपने को ही जानते रहो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रागी द्वेषी है, केवल जानने का नहीं काम करता, उसके साथ उसका राग जुड़ा रहता है, इसलिए आत्मा का लक्ष्य करो ऐसा कहने में आता है। ख्याल में आई बात? श्रेणी में भी उनका तो विषय तो पूरा द्वादशांक श्रुत है, तो उसमें पुद्गल को भी विषय करेंगे, उसके बारे में भी कुछ शब्द होगा, श्रुत का वाक्य होगा, तो उस पर विचार चलेगा उनका, परंतु वो कितने हैं, इतने वितरागता के सहित जान रहे, इसलिए वहां कोई निषेध नहीं है उसका। तो हमें ऐसा, हम तो शुरू से ऐसे सुनते हैं ना कि पर को मत जानो अपने को जानो, तब ये कहने की पद्धति है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही समझेंगे ना, क्योंकि जहां पर को जानने में उपयोग लगा तो इसके राग द्वेष चालू हो गए। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक इसका जितना जानना है वो सब राग द्वेष, भले मंद राग हो तीव्र राग हो। यहाँ कहते ये तो भगवान के, यानी यहाँ अरिहंत भगवान की बात यहाँ चल रही, सिद्धों में तो कुछ है ही नहीं है, परंतु यहाँ आप तक किसको कहा, अरिहंतों को कहा कि सिद्धों को कहा? हाँ, क्यों? उनके द्वारा उपदेश मिल रहा है, इसलिए है दोनों ही सर्वज्ञ वीतरागी, परंतु हमें उपदेश उनसे मिलता है, इसको इसलिए उनको आप्त कहते हैं। देखो अभी आगे बढ़ते, पेज नंबर 104 पर हम पांचवा पॉइंट पढ़ रहे थे, चौथी पांचवी लाइन थी, दानो भाव ए पुण्य छे धर्म नहीं, ये पढ़ा था हमने, ये पूरा ही हुआ था, ये भगवान ने होतो नहीं, ये लिखा ना दानशील उपवास भगवान ने होतो नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्त्री संबंधी, राजा संबंधी, चोर संबंधी तथा भोजन संबंधी विकथा कहवाना ने सांभळवाना कौतूहल परिणाम ते अप्रशस्त राग छे। देखो अप्रशस्त राग ने अशुभ भाव किसको कहा, ये चार इसको विकथा कहते हैं। ये विकथा काहे का भेद है याद है, विकथा कषाय फिर वो तो हाँ प्रमाद के भेद है, प्रमाद के भेद है, याद है ना आपको, या आपने हुई थी बात, तो इसको विकथा कहते हैं। यानी आपस में मिलते हैं तो किस संबंधी चर्चा चलती है, अब यहाँ तो मुख्य रूप से चार बताए, उसमें पेटा भेद तो कितने देखे थे हमने, देखे थे आपको 37,500 भेद देखे थे अलग अलग, है ना। हाँ देखो ये विकथा कहवाना ने सांभळवाना, कहना और सुनना, अभी आजकल तो देखना भी हो गया, टीवी के बॉक्स आएगा ना घर में, हाँ तो मोबाइल भी आया, व्हाट्सएप आया, और ये क्या ये सब, और टीवी लगा लो तो सीरियल में तो यही बात चलती है, विकथाएं ही चलती है। यहाँ हमारी रोज की जिंदगी में इतना उलट पुलट परिणामों का नहीं होता, इतना वो देखते देखते होता है कि नहीं होता, वहाँ चलती है कषाय की बात, तो यहाँ पर भी जीव उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और वो भी राग द्वेष करने लगता है, दुखी होता है, वो देखते देखते रोता भी है कि होता है कि नहीं। मैं तो हमेशा कहती हूँ वहाँ कोई सीरियल चलती है या कोई पिक्चर चलता होगा सिनेमा, और कोई हीरो मार खा रहा है, हाथ में बंदूक है, तो क्या कहते हैं, अरे चलाओ ना बंदूक, क्यों रुका है, उसको नहीं चलाने के पैसे मिल रहे हैं, और तुम चलाओ कह के वो हिंसा कर रहे हो, हिंसा की अनुमोदना का पाप बांध रहे है, करना कराना और अनुमोदना ये सब उसका इक्वल पाप बनता है। हमें लगता है हम तो जैनी, हम कुछ पाप ही नहीं करते, पर ऐसा देखते हुए जो परिणाम हो रहे है कि ये कर रहा है तो अच्छा है, चलो अच्छा है, उसने उसको पीटा बहुत अच्छा किया, ये क्या हो रहा है, यहाँ अपने परिणाम उसको अनुमोदना रूप होते हैं तो ऐसा पाप बनता है, इसको कहते अनर्थ दंड, बेकार का बेकार, ये क्या है, अपना कुछ लेना देना नहीं उसमें, वो जो कुछ वहाँ एक्शन हो रही है, वो जो कुछ ड्रामा कर रहे है, उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं, वो तो लाखों करोड़ों में धन कमाते हैं, और हम यहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं, पाप कमाते हैं, अनंत पाप कमाते हैं, और हम लगता है अरे हम तो जैन ही है, कोई हिंसा नहीं करते, क्या कुछ नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, यहाँ लिखा ना, देखो ये अप्रशस्त राग छे, भूंडो राग, माठो राग, स्त्री संबंधी राग अशुभ, राजा संबंधी राग अशुभ, अब ये जो कुछ हम पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, जो कुछ आपस में चर्चा करते हैं, उसने ऐसा किया, उस नेता ने ये किया, ये तो सब यही बात है ना, अभी राजा ने तो क्या हुआ, उसका जगह उन्होंने लिया, वही राजा कथा ही कहेंगे उसको, तो चोर संबंधी राग अशुभ, भोजन संबंधी राग अशुभ, ये सांभळवाना कौतूहल परिणाम, उसमें रुचि है, कौतूहल है, उसे उत्सुकता है, वो जानने की रुचि है उसमें, ते अप्रशस्त राग छे, पण ओलो प्रशस्त राग छे दयानशील अपवासथी उत्पन्न थतो राग छे, छताय राग दुखरूप छे, प्रशस्त राग पण छे दुखरूप, लोगों को लगता है कि प्रशस्त राग है तो धर्म है, यानी आज तक धर्म कैसे होता है किसको कहना यही मालूम नहीं है, और धर्म के नाम पर भी कुछ शुभ क्रियाएं करना चाहता है, और ये शुद्ध क्या होता है ऐसा प्रश्न होता है उनको। मुझे याद है मेरी माँ जब हम बहुत छोटे थे तो पुणे में कोई कोठारी डॉक्टर कोई थे, वो सोनगढ़ जाया करते थे और वहाँ सिद्धांत प्रवेशिका सिखाते थे, उसमें जाती थी मेरी माँ, अभी इसको कितने साल हुए होंगे, 60 साल पहले की बात है, तो कहते ये शुद्ध शुद्ध क्या होता है, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था ना, तो शुद्ध क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, ऐसी उन्हें तब की चर्चा चलती थी उनकी। तो ये पुण्य पाप से रहित कोई वितराग भाव होता है और वही शुद्ध भाव है, इसकी चर्चा ही नहीं है समाज में, श्वेतांबर क्या है, दिगंबर की बात कर रही हूँ अभी, हम तो दिगंबर में जन्मे हैं ना, और वो सारे व्रत उपवास करने वालों में से है, और मुनियों में जाना आना, उनका मुनियों का आहार देना, उनके प्रवचन सुनना सब चलता था, पर शुद्ध भाव क्या है इसकी पता नहीं थी। तो कहते आकुलता चाहिए, यानी शुभ भाव भी आकुलता है, ये कहना चाहते समझानो का है वगैरह में कहूँ छे ना, गुरुजनों ने वैयावृत्त वगैरह में, वगैरह में वो सब लंबी लिस्ट ले लेना शुभ भावों की। भगवान ने भक्ति मूर्ति ने पूजा एमाती उत्पन्न थतो शुभ राग, ए राग पन दुखदायक छे, क्लेश छे, भगवान ने होतो नथी। यहाँ भगवान के स्वरूप की बात चल रही है, क्योंकि हमें तो होना चाहिए ना, होता है, परंतु मान्यता में क्या लेना है, ये दुखरूप भाव है और इससे धर्म नहीं होता और इसके कारण वितरागता उत्पन्न नहीं होती। इसका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप में इसको नहीं लेना है, तो मैं तो राग रहित ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा हमें स्वीकार करना है, उसकी बात है। सरल है बहुत, परंतु हमने जो मान के रखा है ना, वो मान्यता को छोड़ने को तैयार नहीं, और कुछ करने धरने नहीं, कुछ क्रिया करने से धर्म होता है, ये मान्यता इतनी जबरदस्त है। आगे देखते हैं, 105 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ कहे चे स्त्री संबंधी, राजा संबंधी, चोर संबंधी तथा भोज संबंधी, भोजन संबंधी विकथा ए पाप छे। सांभळवाना कौतूहल परिणाम केम छे, केवी स्त्री, कया गामनी, कया देशनी, केवी रूपाळी, ए बधु सांभळवानो विकल्प ते भूंडो पाप राग छे। एम आहार, क्यानो आहार, कोणे बनाव्यो, केम बनाव्यो, फलाणु ये चीज कहाँ मिलती है, कैसे बनाने है, ये तो ऐसी चर्चा चलती है ना, ये कैसा मिलता है, कहाँ मिलता है, ये बात टेस्टी चाहिए। अच्छा, विस्मयता करे छे ने, कौतूहलता पाप राग छे, ये भगवान ने होतो नथी, उनके तो भोजन भी नहीं है और भोजन संबंधी कुछ कौतूहल भी नहीं है। चार प्रकार ना श्रमण संघ प्रत्यय वात्सल्य, श्रमण यानी मुनिराज, ये मुनियों के संघ की बात है, वो जिसको कहें ना, हाँ, मुनि आरी का श्रावक श्राविका, वो अलग बात है। यहाँ सभी मुनियों को ही चार प्रकार के बताए, उनके प्रति वात्सल्य संबंधी मोह ते प्रशस्त छे, धर्मी को दूसरे के प्रति जो वात्सल्य भाव है, इसको शुभ और अशुभ दो भेद किए इस मोह में। यहाँ मोह शब्द राग छे, मोह एटले परमा सावधानी, एटलू। चार प्रकारना श्रमण संग प्रत्ये वात्सल्य संबंधी मोह जे शुभ छे, ए सिवायनो मोह ते अशुभ छे। अभी किसमें सावधानी, बाल बच्चे, पैसा, ये सब क्या हो जाएगा, अप्रशस्त। श्रमण चार प्रकारना जो ऋषि मुनि यति अने अणगार, नीचे ने फुटनोट में लिखा था, हमने पढ़ा भी था, यहाँ नहीं, जब हाँ गाथा के नीचे पढ़ा था। रिद्धि वाला श्रमण ते ऋषि छे, ये अलग अलग रिद्धियाँ होती है ना, बुद्धि रुद्धि है, चारण रुद्धि है, तो ये जो रुद्धि वाले होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। एवं रिद्धि वाला ऋषि प्रत्ये प्रेम, ए मोह शुभ शुभराग छे, छे मोह। अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान अथवा केवल ज्ञान वाला श्रमण, देखो केवल ज्ञानी वाले को भी श्रवण कहा, क्योंकि मुनिराज को ही केवल ज्ञान होता है ना, हाँ, तो वो केवल ज्ञानी श्रवण कहने में आए, उनको महामुनि भी कहते। हाँ, अरिहंत भी, छह से लेकर 14 तक, ये मैक्सिमम संख्या बताई है। तेना प्रत्येनो प्रेम ए मोह छे, समझाणो काई, शुभराग मोह छे, अहीं मिथ्यात्व नी वात नथी, ये मोह वाला मिथ्यात्व वाला मोह नहीं लेना यहाँ पर, ये आसक्ति रूप परिणाम, उनके सावधानी रूप परिणाम लेना, चारित्र मोह ले। उपशमक अथवा क्षपक श्रेणी में आरूढ़ श्रवण ते यति छे। श्रेणी समझते, अपने नाम सुना है, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी। देखो मुनिराज, उनका हमेशा छठा सातवां गुणस्थान चलता रहता है, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में। जब अंतरंग में स्थिरता बढ़ जाती है, विशुद्धि अत्यंत बढ़ती है, वितरागता के साथ बढ़ती चली जाती है, तो उनके गुणस्थान आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और फिर नीचे दस नौ आठ सात फिर छह में आते हैं, उसको कहेंगे उपशम श्रेणी। ग्यारहवें में पूर्ण वितरकता हो जाती है अरिहंत भगवान जैसी, पर वो पूरा ही अंतर्मूर्त का प्रोसेस है जिसको क्षपक श्रेणी कहते हैं। अधिक विशुद्धि के साथ कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर चढ़े जाते हैं, आठवां नौवां दसवां बारवां और तेरहवां, वो वापस नहीं आते, रिटर्न कोई प्रोसेस नहीं, बस अरिहंत भगवान हो। फिर जितनी आयु बाकी है अभी उतने अरिहंत अवस्था में रहेंगे, फिर चौदहवां गुण स्थान पार करके सिद्ध हो जाएंगे। इसको कहते हैं श्रेणी। श्रेणी में आरूढ़ कहो, श्रेणी में चढ़ने वाले कहो, बात एक ही है। उपशमक यानी वो उपशम श्रेणी वाले उसको उपशमक कहते हैं और क्षपक श्रेणी वालों को क्षपक कहते हैं। नहीं होता, और शुरुआत से ही वो दो अलग अलग है, ऐसा नहीं कि आठ नौ दस हुए कोई ग्यारहवें में जाता है कोई बारहवें में, ऐसा नहीं, क्योंकि सारे जो प्रोसेस है शुरुआत से ही अलग है। उपशम श्रेणी में सबकी उपशमना होती है, यानी अंतर्मूर्त तक उदय में नहीं आते, और वो सारे ही प्रोसेस जुदे जुदे, अभी आप आएंगे ना शिविर में जून में, वहाँ सब उपशमना की बात होने वाली है, चारित्र मुनि, हाँ चारित्र मुनि का उपशम होता है वहाँ पर। और क्षपक श्रेणी में ऐसा प्रोसेस होता है कि उन प्रकृतियों का क्षय होते होते ऊपर चढ़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो, बहुत 150-150 पेज लब्धि सार के उस पर लिखे हैं। तो यहाँ कहते वो उपशमक अथवा क्षपक श्रेणी में आरूढ़ श्रवण तय यति छे, ये भी अद्भुत पुरुषार्थ है। लोगों को लगता है उपशम श्रेणी क्यों चढ़ते हैं, उनको मालूम नहीं कि गिरना पड़ता है। हम गए थे वो कहाँ गए थे, वो राजनांद कौन सा छोटा गांव था, राजनांद गांव के ऐसा कुछ नाम था ना उसका, तो वहाँ गए थे तो देउलगांव राजा, हाँ राजनांद गांव तो वहाँ छत्तीसगढ़ में, देउलगांव राजा। तो वहाँ किसी महिला ने प्रश्न पूछा हमको ऐसे लिखित रूप से कि बिचारे मुनिराज क्या लिखते हैं, बिचारे कौन कह रहे हैं, श्रावक मिथ्या दृष्टि, मुनिराजों को बिचारे कह रहे हैं। तो कहते हैं बिचारे मुनिराज, क्या उनको पता नहीं उपशम श्रेणी से गिरना पड़ता है, फिर चढ़ते ही क्यों है। ये स्वरूप स्थिरता सहज होती है और जितनी कुछ विशुद्धता होनी वो सहज होती है, कोई सोच समझ कर, कर नहीं सकता। आप सोच समझ कर क्रोध भी कर सकती है कि नहीं कर सकती, और यहाँ आने का परिणाम सोच समझ कर सकती है कि नहीं सकती, हाँ करती हूँ हाँ, यानी हम कंट्रोलर है, ये आते हैं, परंतु अज्ञानी क्या समझते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए उसको प्रश्न क्या होता है, वो क्यों ऐसा करते हैं, इतना समझदार है फिर ऐसा क्यों करते हैं। आपको लोग पूछते होंगे आप शास्त्र में जाते हो इतना क्रोध क्यों करते हैं, आपको कोई मिला कि नहीं, मिल गया। देखो ये हमें मान्यता में लेना है, पहले में पहले क्रोध मान माया लोभ हो या शुभ अशुभ परिणाम हो, जो कुछ है आने योग्य आते हैं, उसका कंट्रोल करके उसको कंट्रोल नहीं कोई कर सकता। तो कहेंगे सब स्वच्छंद हो जाए, ये मान्यता में स्वीकार करना है। उपदेश देना है तो कहेंगे ये पाप क्यों कर रहा है, ये छोड़ दो, रोज मंदिर में जाओ, शास्त्र सुनो, ऐसा कहेंगे, परंतु उपदेश की भाषा होती है। उपदेश की भाषा वो तो हम जिसको कहेंगे ना चरणानुयोग की भाषा में कहेंगे सब ऐसा, ये कहेंगे इस तरह से आपको व्रत आदि करना चाहिए, रोज दर्शन करना चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, ये चाहिए वाली भाषा सब चरणानुयोग की भाषा है। द्रव्यानुयोग में तो कहेंगे जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताएंगे कि जिस भूमिका में जिस गुणस्थान में जो जीव है और उसके जो होने योग्य परिणाम वो होते हैं, तो उसको क्या करना, अभी उसको ये स्वीकार करना कि ये मेरे नहीं है, मैं तो कैसा है, मैं पना किसमें स्थापित करना है, जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है जिसको हम शुद्ध कहते हैं, शुद्ध यानी अभेद अखंड, उसमें कोई भेद नहीं करना है। ये पर्याय में जो कुछ राग आदि है उससे मैं रहित हूँ कायमी स्वभाव की अपेक्षा, वो स्वीकार करना है, और ये सब मान्यता और ज्ञान में हो जाता है। यहाँ तो करने धरने की कुछ बात ही नहीं, ज्ञान करना है किसी को करना लगता ही नहीं है, ज्ञान भी अपनी परिणति है ना, वो जीव कर रहे हैं ना, वो उस रूप परिणमित हो रहा है वो, परंतु वो मैं कुछ किया ऐसा लगता नहीं उसको, जब तक बाहर कुछ हेरा फेरी नहीं करता तो मैंने कुछ किया ऐसा नहीं लगता है। क्या कहते हैं देखो पेज नंबर 105 पर है वीरेश भाई, सेकंड थर्ड पैराग्राफ, ये किसको यति कहना वो बात चल रही थी। ઉપશમક અથવા ક્ષપક શ્રેણીમાં આરૂઢ શ્રમણ તે યતિ છે, એના પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ રાગ છે. સામાન્ય સાધુ તે અણગારશે. દેખો શ્રાવક હોગા તો ઉનકે તો યે મુનિઓ પ્રતિ જો કુછ ચાર સંગ બતાએ હૈ ઉનકે પ્રતિ તો અવશ્ય વાત્સલ્ય રૂપ શુભા ભાવ હોગા હી હોગા, ક્યુંકિ શ્રાવકોં કો દેવ હૈ, ગુરુ હૈ ને મુનિરાજ હૈ, શાસ્ત્ર હૈ, ઉસ સંબંધી પ્રશસ્ત રાગ તો હોગા હી. ખ્યાલ મેં ઉસકે હોતા હૈ, પરંતુ વો રાગ સે ધર્મ નહીં હોતા, યે સ્વીકાર કરના હૈ. જબ યે કહેતે રાગ સે ધર્મ નહીં તો રાગ કોઈ નહીં, વો ક્રિયા કો હી છોડના ચાહતા હૈ. અભી કરતા થા, અબ કહેતે મેં છોડ દૂંગા. જૈસે આપકો સિખા યહાં કે રોટી સ્ત્રી નહીં રોટી બના સકતી, વો રોટી બની કિસમે સે બની, તો આટે મેં સે બની, તો ઉસકા ઉપાદાન કારણ વો આટા હૈ, તો આપ રોટી બના નહીં સકતી, એસા દ્રવ્યાન યોગ કહેંગે. તો એસા હૈ ક્યા કલ સે નહીં બનાઉંગી, તો માન્યતા છોડી કે નહીં છોડી? નહીં છોડી. નહીં બનાઉંગી કા અર્થ મેં બના સકતી હું, પણ અબ નહીં બનાઉંગી, યે ઉસકા કહેના હૈ. યાની ઉસકી માન્યતા વૈસી રખી. ખ્યાલ મેં આઈ ને વાત? તો યહાં કહેતી શુભ ભાવ સે ધર્મ નહીં હોતા, હમ છોડ દેંગે. અરે છોડ દેંગે તો પાપ મેં ડૂબ જાઓગે ઓર નરક નિગોદ કે ભાગી હો જાયેંગે. વહાં જૈસે પરિણામ હોગે વહાં ચલા જાયેગા. તો એ તો રાગ કિસકો કૌંસા રાગ કહેના ઉસકી વાત ચલ રહી હૈ. પરંતુ યે રાગ ભગવાન ઉસ રાગ સે રહિત હૈ ઓર મેરા સ્વભાવ ભી ભગવાન જૈસા હૈ, યે નક્કી કરના હૈ. યે ભગવાન કે ગુણ ગાને સે ક્યા ફાયદા હૈ? હમારા સ્વરૂપ જો હૈ વો ભગવાન જૈસા હૈ, હમારે ભી સ્વભાવ મેં યે કોઈ દોષ નહીં હૈ. પર્યાય મેં હૈ તો પર્યાય મેં હૈ, પરંતુ મેં ઉસ દોષ સે રહિત એસા મેં ત્રિકાલી સ્વભાવ મેરા હૈ, ઉસકો હમકો બિલકુલ નિર્ણય મેં લેના હૈ. પહેલે મેં પહેલે નિર્ણય કે બિના કોઈ આગે કાર્ય નહીં હોગા. દેખો સાત નંબર કા પોઈન્ટ, ધર્મરૂપ તથા શુક્લરૂપ ચિંતન, જિસકો ધ્યાન કહેતે હૈ. યે ધ્યાન ભી કૈસા હૈ? જો વિકલ્પાત્મક જો ધ્યાન હૈ વો શુભ ભાવ હૈ, ક્યુંકિ આત્મા સંબંધી વિકલ્પ ચલ રહે હૈ યહાં પર. યા ધર્મ શુક્લ ધર્મ ધ્યાન મેં તો ત્રિલોક સંબંધી ભી વિચાર ચલેગા, સંસ્થાન વિચે ધર્મ ધ્યાન હૈ. યે કર્મ કી જો કુછ બંધ કૈસે હોતા હૈ ઉસમે સે કઈ, યે સબ ચિંતન ચલતા હૈ, ઉસકો ભી ધર્મ ધ્યાન કહેંગે. યે કૈસા હૈ? શુભ ભાવ રૂપ. ધર્મ ધ્યાનનું ચિંતન, શુક્લ ધ્યાનનો અંતર વિચાર એ પ્રશસ્ત છે. તે સિવાયનું આર્તરૂપ તથા રૌદ્રરૂપ ચિંતન અપ્રશસ્ત છે. આપકો માલુમ હૈ આર્ત ધ્યાન કે ભેદ ચાર હોતે હૈ? હા બોલો. નહીં નહીં નહીં, વો તો ધ્યાન કે આપ ચાર ભેદ કે, આર્ત ધ્યાન કે ચાર ભેદ? સુશીલાબેન, હા વો તો રૌદ્ર ધ્યાન હુઆ. દેખો દેખો, આર્તર કા અર્થ હોતા હૈ દુઃખરૂપ પરિણામ. ऐसा चिंतन चलता है कि उसको दुखरूप परिणाम होते हैं, और रौद्र ध्यान में ऐसे परिणाम ऐसा चिंतन चलता है कि उसको खुशी खुशी होती है. कैसे? आर्त ध्यान में देखो, इष्ट वियोग, हमारे कोई इष्ट का वियोग हुआ, मरण हुआ, या हमको छोड़कर कहीं चला गया, वो क्या है? इष्ट वियोग. खाली वो छोड़ के गया तब दुख हुआ उसकी बात नहीं, बारम्बार उसके बारे में जो चिंतन करते दुखी होता रहता है उसको कहेंगे इष्ट वियोग आर्त ध्यान. दूसरा क्या? अनिष्ट संयोग, हमें नहीं चाहिए उसका संयोग हुआ है और हम बार बार उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं, वो क्या है? अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान. फिर पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई अन्य, तो बार 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 उसके बारे में सोचता रहता है और दुखी होता रहता है, ये पीड़ा चिंतन. और एक निदान, यानी जो विषय भोगों संबंधी मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके वो उसके संकल्प बनाते रहता है, उसको कहेंगे निदान नाम का आर्त ध्यान. ये आर्त ध्यान के चार भेद कौन से बताए? इष्ट वियोग, अनिष्ट ज लगाना, ज यानी उससे उत्पन्न होने वाला, अनिष्ट संयोग ज, पीड़ा चिंतवन और निदान. अब रौद्र ध्यान के चार भेद बताएंगे आप. हाँ, हिंसा नंदी का अर्थ है हिंसा करके और उस संबंधी विचार करके उसमें आनंद मानना. फिर मृषानंदी में झूठ बोलना, मैंने ऐसा झूठ बोला, उस संबंधी विचार करते रहता है और फिर आनंद मानता है. चौर्यानंदी में चोरी के परिणाम में उस संबंधी चिंतन करके आनंद मानता है. परिग्रहानंदी, परिग्रह जोड़ के उस संबंधी विचार करके, जो तो सब जगह बाहर चले जाओ तो यही बात चलती है, परिग्रह पाप है कौन मानेगा, और उसके संबंधी चिंतन चलता है, ये पाप रूप ध्यान है, ऐसे कोई कहेगा क्या? क्योंकि इसी के लिए सब बाहरी व्यापार धंधा ये सब क्यों हो रहे सारा? एजुकेशन भी उसी बहाने से लिया जाता है ना? यहाँ क्या कहते हैं, शुक्ल ध्यान और वो धर्म ध्यान वो शुभ रूप था, प्रशस्त था, और आर्त रूप और रौद्रदूप चिंतन वो अप्रशस्त अच्छे। चिंतन नाम दिया वहां ऊपर, उसको चिंता कहा। ध्यान की परिभाषा में भी एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, चिंता नहीं चिंतन, बारंबार उस संबंधी विचार, ये भगवान ने होता न थे। भगवान तो अपने केवल ज्ञान से सबको जानते हैं, वहां कोई ऐसा आर्त रूप रौद्र रूप धर्म रूप कोई शुभ भाव रूप चिंतन ऐसा कुछ है ही नहीं वहां। और ये सब मन के द्वारा भी चलता रहता है ना, वहां तो कोई मन का कार्य ही नहीं है। प्रशस्त पण नथी अने अप्रशस्त पण नथी, कोनो ध्यान करे छे, ध्यान कहूं छे ने शुक्ल ध्यान केवली ने। देखो केवली को जो शुक्ल ध्यान कहा है वो उपचार से कहा है, क्यों? क्योंकि ध्यान का फल क्या है तो निर्जरा है, और केवली तो सबसे ज्यादा असंख्यात गुणा निर्जरा तो केवल ज्ञानी की होती है केवली में, इसलिए उसको ध्यान कहने में आता है शुक्ल ध्यान। परंतु वह जैसे नीचे के गुणस्थानों में है वैसा नहीं, वो उपचार से बताया जाता है। देखो शुक्ल ध्यान केवली ने ए आनंद नो अनुभव करे ए ध्यान छे, है ना? अभी कर्म की तरफ से बोलना है तो कर्म की निर्जार चल रही है, और वो स्वयं क्या कर रहे हैं आप पूछते ना, क्या करते हो गए? ये करते हैं आनंद का अनुभव। कितना आनंद? अनंत आनंद, प्रति समय नया नया। ऐसा नहीं कि किया और उसको याद करते बैठे, ऐसा नहीं है। हमने एक बार सुबह कुछ लड्डू खाए और उसकी स्मरण करते बैठे, वैसी बात नहीं है। हाँ, तो क्या आनंद नो अनुभव करे ये ध्यान छे। अतीन्द्रिय अमृत सागर उछली गयो छे ने, क्या कहा? अतीन्द्रिय, ये हमारे जो आनंद हम सुख मानते हैं वो कैसा है? वो इंद्रिय जनित है। कल बात आई थी ना, वो तो बाधा सहित है, पराधीन है, दुख रूप है, विषम है, कितनी कितनी बातें आती है उसके बारे में। और वो तो हमारी कल्पना में हमने सोच लिया, उसको सुख मान लिया है, और उसको करते रहते और उसके पीछे दौड़ते रहते, सुख तो है ही नहीं है। तो अतीन्द्रिय अमृत सागर उछली गयो छे ने, बाढ़ आवी छे, बाढ़ पर्याय मां दरियो उछली ने भरती आवी छे। तो ऐसे अंतर में से उछल कर आनंद आ रहा है बाहर। तमारा मां बाढ़ कहे छे ने, बालचन जी बाढ़ कहे छे, अमारे यहाँ भरती कहे छे, भरती भरती। भगवान ने तो अनंत आनंद नी बाढ़ आवी छे, सुधा जल अमृत जल। अभी शब्दों में कैसा वर्णन करे उसको, तो सुधा और अमृत जैसे शब्दों से उसका वर्णन करना चाहते हैं। जेना पर्याय में उछाला मारे छे एने आवो राग आदि होतु नथी। आठवां पॉइंट, अभी जो दोषों की चार चर्चा चल रही है, तिर्यंचो तथा मनुष्यों ने वयकृत देह विकार तेज जरा चे, जरा इन्हें बुढ़ापा। मनुष्य और तिर्यंच उनकी उम्र बढ़ती है तो देह में जो कुछ वहां हम कहें वो तो कहेंगे या तो बूढ़ा हो गया या अभी वो तो शिथिल हो गए, गात्र शिथिल हो गए कहते हम, चेहरों पर वो झुर्रिया आ गई और क्या क्या होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? जरा देहकृत विकार, वयकृत देह विकार। भगवान ने जरा होती नहीं, देखो देवों को नहीं लिया क्योंकि देवों का तो दिव्य शरीर है, वहाँ कोई बुढ़ापा वगैरह नहीं होता। नारकियों के ऐसे भी रोगी शरीर है, वहाँ तो कुछ बात ही नहीं उसकी। करोड़ पूर्वनु आयु होए, मिलिंद भाई ये करोड़ पूर्व क्या होता है? एक करोड़ पूर्व, उसका कितना हिसाब आपको मालूम है? आपने सुना है भाई? नहीं सुना है ना, ये हमारे भाई नैरोबी से आए हैं, हाँ विक्रम भाई, हाँ उनके लिए आपको पूछ रहे हैं, करोड़ पूर्व का हिसाब बताओ जरा। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं ये बताओ? हाँ 84 लाख वर्ष × 84 लाख वर्ष वो कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष, 70,56,000 करोड़ वर्ष इज इक्वल टू एक पूर्व। ऐसा एक पूर्व, दो पूर्व, तीन पूर्व, ऐसे कितने पूर्व? करोड़ पूर्व। जो सिमंदर भगवान की आयु इतनी चल रही वहां पर, विधेय क्षेत्र में इतनी बड़ी आयु होती है, हमारे यहाँ कोई इतनी बड़ी आयु वाले मालूम है? हाँ, आदिनाथ भगवान की कितनी थी? 84 लाख पूर्व और उनकी 1 करोड़ पूर्व, यानी 100 लाख पूर्व उनकी, ये 84 लाख पूर्व की आदिनाथ भगवान की। हमें तो वो इमेजिनेशन के बाहर लगती है ना, इतनी आयु क्या करते होगे इतनी आयु तक, आप क्या करते हैं 100 साल तक? वो तो अभी पूछा उन्होंने, केवल यानी क्या करते होगे। हाँ शोभा बहन, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जा देखो देखो, हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो आप लिख लो, 1 पूर्व इज इक्वल टू 70 लाख, यानी 70 56,000 56,000, और उसके आगे 7 जीरो लगाना, यानी करोड़। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 70,56,000 करोड़, इतने वर्षों का 1 पूर्व होता है। और करोड़ पूर्व कहते हैं, अभी सिमंदर भगवान है, करोड़ पूर्व की आयु वाले है, तो ऐसे 1 पूर्व 2 पूर्व 3 पूर्व, ऐसे करोड़ पूर्व। हाँ पूर्व के आगे और 7 जीरो, हाँ इतने पूर्व, इतने करोड़ पूर्व। देखो यहाँ क्या कहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, इतनी लंबी किसी की उम्र है। अब अर्लीस्ट किसी को केवल ज्ञान कब हो सकता है मालूम है? हाँ 8 साल के बाद वो मुनि, जब मुनि दीक्षा अंगीकार कर सकते हैं, उसके बाद अंतर्मूर्त में रहकर क्षपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। तो 8वें साल में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, अब उनकी लंबी कितनी बाकी है, 8 साल माइनस करो, बाकी इतनी आयु बाकी रहे, तो बुढ़ापा आता होगा कि नहीं उनको? तो केवल ज्ञानी को बुढ़ापा नहीं आता। हाँ वहां पर भी विधेय क्षेत्र में जो केवल ज्ञानी नहीं है, अन्य मनुष्य हमारे आप जैसे, उनको तो बुढ़ापा आता होगा। अमुक उनकी जो कुछ प्रोपोर्शनेटली जितना, जैसे हमारे यहाँ जाते हैं 80 साल हुए, 60 साल के ऊपर, 70 साल के ऊपर, वहाँ 70 लाख पूर्व के बाद आता होगा उनका बुढ़ापा, परंतु वहाँ तो बुढ़ापा तो है, परंतु जिनके केवल ज्ञान होता है उनका नहीं होता। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो करोड़ पूर्वणु आयुष्य होए तो पन जरा होती नहीं। किसको? केवल ज्ञानी की बात चल रही है, अकेले करोड़ पूर्व के आयु वालों की बात नहीं चल रही। उनको तो जो सामान्य जो वहां के मनुष्य हमारे जैसे, उनको बुढ़ापा होगा, विधेय क्षेत्र में भी बुढ़ापा होगा, होती है ना, अकेले तीर्थंकरों की होती है ऐसा थोड़ा ही है। वहां के सभी जो वहां के एवरेज आयु ही 1 करोड़ पूर्व की है। हाँ उसमें किसी की थोड़ी कम ज्यादा होती होगी। हाँ क्यों क्यों नहीं, अभी तो सिमंदर भगवान कहाँ के हैं, तो खाली भगवान को इतनी बड़ी आयु होगी और बाकी लोगों को नहीं होगी, ऐसा कैसे होगा? महावीर भगवान की कितनी थी? 72 साल की थी ना, तो हमारी आपकी 72 साल की नहीं हो सकती, अरे उनसे ज्यादा भी हो सकती है। हमारे यहाँ भी जब पहले जमाने में तीर्थंकर हो गए थे, उनके समान वहाँ की आयु अन्य लोगों की भी थी, जैसे पहले तीर्थंकर की इतनी थी, अब लास्ट में वो घटती गई, तो उस प्रोपोर्शन में उनकी भी तरुण्य अवस्था कभी होती है, बालक अवस्था कितने तक कहीं नहीं, वो तो डिफरेंस होगा कि नहीं उनमें भी?
तो वैसे ही वहाँ समोसन में अन्य केवी, सामान्य केवियों की भी आयुष्य उतनी हो सकती है?
हाँ हो सकती है ना, हाँ बिल्कुल हो सकती है। अरे केवल ज्ञानी नहीं भी है, मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है। मिथ्या दृष्टि के बाद छोड़ो, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की भी इतनी हो सकती है। दोनों की, हाँ करोड़ पूर्व की आयु वाले तिर्यंच भी हो गए वहां पर। ये शास्त्र का वचन है ना, अपने घर की हमारी बात नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर, और ये मनुष्य और तिरंज दोनों को ये बुढ़ापा वो हो जाएगा। जैसे हम हमारे आसपास देखते हैं ना प्राणी, अन्य प्राणी देखते हैं, तो उसमें भी अभी इतना साल अभी कुत्ता हो गया, या सिंह है, व्याघ है, या गाय है, तो उनमें भी वय के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार बुढ़ापा तो देखा होगा कि नहीं आपने? हाँ होते हैं उसमें। तो कहते करोड़ पूर्वों ने आयु हो तो पण जरा होती नहीं, किसके लिए? केवली भगवान के लिए। एवं ने एवं शरीर लागे तीर्यंच तथा मनुष्यों वय, हाँ वय वय छे ना, वयकृत वय ने उमर, गुजराती में वय शब्द है ना, ये देहनो विकार छे। वय ने लीधे थती शरीर नी जीर्ण दशा, ये जीर्ण दशा भगवान ने होती नथी। तो हमारी तो होती है कि नहीं होती? होती है। किसकी होती है? हमारी होती है। हाँ भले वो जीर्ण शरीर की होगी, परंतु शरीर की दशा से अपने को पहचानना मत। शरीर रोगी हो तो हाय मैं रोगी, हाय मैं दुबला, अभी पैरालिसिस हो गया, हाय मुझे पैरालिसिस हो गया, मैं परतंत्र हो गया, मैं पराधीन हो गया, रोना आता है ना। क्यों? शरीर, मैं शरीर रूप हूँ मानता है, तो ये सब उसके पीछे दुख चाले हो जाते हैं। तो पहले से शरीर से मैं जुदा हूँ ये नक्की कर लो, फिर शरीर छोड़ने का भी समय आएगा तो भी दुख नहीं होगा, शरीर में बुढ़ापा आएगा तो भी दुख नहीं होगा, शरीर की कैसी भी अवस्था क्यों नहीं आ रही, मैं तो उससे भिन्न हूँ, मुझे क्या उससे लेना देना। परंतु उसके साथ इतना एकत्व हो जाता है, वो काला हो गया तो मैं काला, वो ठीकना है तो मैं ठीकना, वो तो बीमार तो मैं बीमार, और लोग तो उसी को देखकर आपके साथ बात करते हैं, हम लोग हंसते भी है तो आपको बहुत बुरा लगता है ना। हमको तो लोगों की मराठी में क्यों कहते हैं, दया करनी चाहिए, क्योंकि ये कहाँ देख रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, वो तो मुझे देख ही नहीं सकते। अपनी यहाँ आत्मभावना में बात आई थी ना आत्मा, क्योंकि मैं तो अरूपी हूँ, मैं तो जीव द्रव्य हूँ, अरूपी हूँ। वो सामने वाला जो जीव है वो भी अरूपी है, परंतु वो किसको देखकर बोल रहा है? शरीर को देखकर। वो तो अपने को कहाँ देता है, उसको देता है। अब यहाँ कोई पत्थर रखा है, कोई इसको गाली देता है तो आपको दुख होगा क्या? और इसको गाली देता है तो दुख होता है क्यों? मैं उस रूप हूँ ये मान लिया है, ये सारी मूल में भूल वहीं से चालू हो जाती, पूरे दुख का कारण इतना ही है, इसको कोई दूसरा दुखी कर ही नहीं सकता है, ये सब मान्यता का दोष है उसका। और उसको गाली देने में खुशी होती तो आपको क्या चिंता है?
वो तो मुझे देख ही नहीं सकता है, किसको गाली
दे। ये तो कितनी बात, इसमें भी आई थी ना, अपनी आत्मभावना भी आई थी, उसके समाधि तंत्र में आई थी बात। क्षुधा लागी, तृषा लागी ने शरीर जीर्ण थई गयु, अने आहार लीधा पछी पुष्ट थई गयु, एवो पाठ भगवती ना पंदरमा शतक मा छे। ये गुरुदेव ने वहाँ के सारे श्वेतांबरों के शास्त्र पढ़े थे, तो कहाँ कौन सी क्या भूल है उनको पता था, हमने तो पढ़े ही नहीं ना, हमको मालूम ही नहीं उसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने दिगंबर जो परिवर्तन किया दिगंबर में, उसके पहले तो उसका अभ्यास था उनका, तो कहाँ क्या लिखा है उनको पता था, यहाँ लिखते सब। तो भगवती ना पंदरमा शतक मा छे, बधी वातु मा बहु फेरफार। जो आता है ना कि भगवान अभी वो तो उनका भी नजीक आया मोक्ष गमन, तो शिष्य दुखी होगा, वो कैसे ऐसे लेटे थे, हाँ त्रस्त है ना, वो तो क्लांत थक कर थक गए थे, और फिर उसको शिष्य को नजदीक बुलाया और कह दिया तू अभी यहाँ से चला जा, आदि जो बातें आती है ये कैसी है, ये गुरुदेव की भाषा में क्या है, बहु फेरफार। भगवान का स्वरूप ही ऐसा नहीं होता, पहले में पहले पहली कंडीशन है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उसको हमको अपनी मान्यता में नक्की करना है। कल आपने बात पही ना वो तो मल्लीनाथ की, तो भगवान स्त्री पर्याय में कोई भगवान होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? हमको नक्की करना पड़ेगा। द्रव्य से जो स्त्री है उसके पांचवें गुणस्थान के ऊपर का पुरुषार्थ ही नहीं हो सकता, ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध रहते हैं। तो कहते हैं वो स्त्री को वज्रभूषण नाराज सहनन भी तो होता है, कहाँ के भोग भूमि के, स्त्रियों को भी वज्रभूषण नाराज सहनन ही है एकमात्र, पर वो भोग भूमि में वो सहनन होने से कोई वहाँ चौथे गुणस्थान के ऊपर भी कोई नहीं जा सकता, ना पुरुष जाता है ना स्त्री जाती, ये सहज जहाँ के जो नियम है। अन्य सहनन नहीं होते, वज्रोषभ नाराज सहनन एक ही होता है वहां पर। स्त्री को भी और पुरुष को भी। कर्मभूमि में 6 सनन होते हैं। सहनन बिना होते हैं। वैकिरिक शरीर में कोई सहनन नहीं, आहारक शरीर में भी सहनन नहीं। हाँ, सहनन है ना वो हड्डी, जो मजबूत कितनी हड्डी है उसको सहनन कहते हैं। वो वैसे नाम कर्म लेके आया है और उसके उदय में वैसी बातें होती है, सहज होती है, और वो कोई सहनन बदल नहीं जाता। मैं तो मजाक में कहती हूँ आजकल वो सहनन भी बदल देते, कौन सा स्टील का सहनन हो गया हमारा, ज्वाइंट बदल देते आप कहोगे ना बधु फेरफार। यानी जो भगवान के स्वरूप में जिन्होंने फेरफार करके जो कुछ ग्रंथ रचना की है, तो ये पहले में पहले मान्यता में स्वीकारना चाहिए, नहीं तो मान्यता खोटी रखी। और चाहे जैसा ध्यान करना चाहे, चाहे जैसे उपवास करे, चाहे जैसा स्वाध्याय करे, परंतु ये मूल मान्यता भगवान के स्वरूप के बारे में गलत रखी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मूल में भूल है जिसको कहते हैं। 9वां पॉइंट, वात पित्त ने कफनी विषमता थी उत्पन्न थती, कलेवर ने शरीर संबंधी पीड़ा। देखो ये मरने पर उसको कलेवर कहते, पर अभी भी वो उसमें कहाँ जान है, ये जान तो जीव में है, शरीर में कहाँ है। उस संबंधी पीड़ा, देखो ये आयुर्वेद के नियम है तो बीमारी क्यों होती है, तो वात पित्त और कफ इसका बैलेंस जो होता है वो जब बिगड़ जाता है तब वहां रोग पैदा होता है, उसकी बात कर रहे हैं। भगवान ने रोग न थी, दवा लेवा गया, भगवान ने गोशाले मारियो, तेजो लेशा समोशरण मा। अब ये क्या क्या होता है मालूम नहीं, मगर ऐसे वो श्वेतांबरों में पद्धति है बोलने की, कुछ वहां की कोई पन समोशरण मा एवं आवी शकेज नहीं, सांभळने मारे से नो। भगवान ने 6 महीना सुधी लोहीखंड जाड़ो, लोहीखंड जाड़ा समझो छो, 6 महीना सुधी लोहीखंड नो जाड़ो भगवान ने रहयो। अच्छा अच्छा, ने वो तो डिसेंट्री हो गई ऐसा कुछ है, खून की। तेजो लेशा मारी, लेशा बधी वातो कल्पित छे, भगवान ने होतू नथी। अरे व्यवहार भगवान कौन छे इन्हें ओळख्या नहीं, ये तो व्यवहार भगवान है, बाह्य भगवान का बाह्य स्वरूप में इतनी गड़बड़ी है तो अंतरंग में स्वरूप में कितनी गड़बड़ी करेंगे। हमने कल बताया था तो असाता वेदनी की उदीर्ण होती नहीं साता असाता की, छठे के बाद न भूख लगने का सवाल है, न क्षुधा लगने की सवाल है, कुछ नहीं है। निश्चय भगवान ने तो ओळखेज नहीं, क्या कहा, भगवान का बाह्य स्वरूप जिसको निश्चय निश्चित करने में भूल है तो अपने निजव आत्मा को नहीं समझेगा। फिर से पढ़ते, व्यवहार भगवान कोने छे एने ओळख्या नहीं, निश्चय भगवान ने तो ओळखेज नहीं। अब वो कितना भी शास्त्र का अभ्यास करे, कितना भी प्रवचन सुने, वो उसके बाद वो हजम होगी ही नहीं, वो मर्म उसके ख्याल में ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो भगवान का बाह्य स्वरूप निश्चित करने में बहुत बड़ी भूल कर रहा है। अन्या व्यवहार भगवान ने श्रद्धा, ये व्यवहार भगवान किसको कहा, भगवान का बाह्य स्वरूप, ये तो निश्चय ने बतावे छे। भगवान का व्यवहार यानी भगवान का बाह्य स्वरूप उनके भगवान के अंतरंग को बताते हैं। जैसे मुनियों का बाह्य स्वरूप क्या है, निष्परिग्रह अवस्था है, जिसको अंतर में ऐसी वितरागता है उसके बाह्य में ऐसा स्वरूप होता है, तो वो बाह्य स्वरूप उनके अपने अंतरंग को बताता है। केवल बाह्य इसलिए अंतरंग में ऐसा नहीं है, वो दोनों सुमेल होता है उसका। तो कहते व्यवहार भगवान की श्रद्धा है तो निश्चय ने बतावे छे, साचा भगवान की श्रद्धा, ये पहले में पहली कंडीशन है, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र की श्रद्धा, उसको सम्यक तो कह दिया। उसको क्यों सा? तो हमने सच्चे देव की श्रद्धा नहीं, यही भगवान है हम उसको नमस्कार करेंगे। ये तो व्यवहार श्रद्धा निश्चय को बताने वाली है, जिसको निश्चय श्रद्धा होती है उसके व्यवहार में ऐसी श्रद्धा पाई जाती। પોતાની શ્રદ્ધા એ તો કાંઈ વસ્તુ છે જ નહીં. જો ને દરેકની ટીકા કરીને ખુલાસો કર્યો છે. રોગ સમજાણો, ભગવાનને રોગ થયો ત્યાં અણગારને કહ્યું, જાઓ ફલાણાના ઘરેથી લઈ આવો, એના ઘર માટે પકવાન કર્યો છે એ લઈ આવો, ઘોડા માટે કર્યો એ, મારા માટે કર્યો એ લાવીશ નહીં, એવું આવે છે ને, ઘોડા માટે કર્યો છે એ લઈ આવજો, એસા કુછ હોગા વહાં કે શાસ્ત્રો મેં હે એસા કુછ ઉન્હોને સુના હોગા, હા સુના હોગા. કિસમે આતા યે સારા? અચ્છા ઉસમે આતા. એ બધી વાતો કલ્પિત રચના. આહા હા, ભારે કઠિન વાત ભાઈ. સંપ્રદાયની વાતમાંથી છૂટવું, જેમાં જન્મ થયો હોય એના સંસ્કાર પડ્યા હોય, ગળતા ગળતા ગળથા ખાતા ખાતા નીકળ્યા છે, કેટલી વાર લાગી જુઓ ને, ખબર છે કે નહીં? કે તે જિસમે જન્મ હુઆ હૈ ઓર ઉસકે સંસ્કાર વો સુનતે સુનતે ઉસી કે વહી સચ લગને લગા હૈ. તો ઉસકો જો ખોટા હૈ ઉસકો ખોટા માનને મેં કિતના વિશ્વાસ લગેગા કે નહીં? અભી સત્ય સુનને કો તો મિલા હૈ, અભી એસે કિતને કી જિન્હોને સત્ય કભી સુના હી નહીં હૈ. તો આપ લોગ તો એસે, મેં તો કહુંગી જ્યાદા પુરુષાર્થ વાલે હો, કે અપના જો સુના હુઆ વો ઝૂઠ હૈ યે ખ્યાલ મેં આને પર ઇસમે અટક રહે ગયા. કે આપ રોજ એક આપકો મુંહ દેખો એસા લગતા હૈ કે આપને વો સબ સારે ભૂલે વો યાદ આતી હૈ આપકો, ક્યા કરે. દેખો આવા દોષો અરિહંત પરમાત્માને હોતા નથી. એવા અરહંતની અહિરંત હુઆ, હવે પઢને કિતની આદત હતી કે ભૂલ ખ્યાલ મેં નહીં આતી. અરિહંત, એવા અરિહંતની શ્રદ્ધા કરવી એ શુભરાગ છે. અને એ રાગ એમ બતાવે છે કે અંદરમાં એને નિર્મળ સંકિત છે એમ બતાવે છે. એ માટે આ વ્યવહારની વાત કરી છે. લોક તો કહેતે પહેલે એસા વ્યવહાર હોગા બાદ મેં નિશ્ચય પ્રકટ હોગા, એસા નહીં હૈ. એ વ્યવહાર ઉસી કો કહેતે જિસકો નિશ્ચય હૈ. તો ક્યાં સમ્યક દર્શન હોને કે પહેલે એસી શ્રદ્ધા નહીં હોગી, એસા ઉસકો હા નિર્ણય વાલી વાત રહેગી વહાં પર, પરંતુ ઉસકો વ્યવહાર નામ નહીં દેંગે. અભી તો વો નિર્ણય કી પરીક્ષા કી ભૂમિકા હૈ, ઉસને અપને જ્ઞાન સે નક્કી ક્યા નહીં ભગવાન તો એસે હોના ચાહીએ, પરંતુ ભગવાન એસા હોના ચાહીએ જો ભગવાન કી જો નિર્ણય કરતા હૈ ઉસ સ્વ સન્મુખતા સે અનુભવ હો જાતા હૈ. અગર વો અનુભવ તક પહોંચા હૈ તો ઉસકે ઉસ શ્રદ્ધા કો હમ કહેંગે યે વ્યવહાર શ્રદ્ધા હૈ, તબ તક ઉસકો વ્યવહાર નામ નહીં દેંગે. આગે બઢતે પ્રવચન નંબર 9. નિયમસાર જીવ અધિકાર, એમાં પરમાત્મા સશરીરી અરિહંત કેવા હોય? તો પરમાત્મા ભી દો પ્રકાર કે હોતે હૈ ના? હા મિલી ભાઈ, સશરીરી ઓર અશરીરી દો પ્રકાર કે પરમાત્મા હોતે હૈ? બોલો. સંયોગ ઓર અયોગ દોનો હી સશરીરી હૈ, જિસકો સકલ કહેતે, સકલ કલ એને શરીર, સકલ પરમાત્મા ઓર સિદ્ધ ભગવાન નિકલ પરમાત્મા અશરીરી. હા સશરીર અને અરિહંત ભગવાન 13-14 વાલે અશરીરી અને સિદ્ધ ભગવાન ગાતે તો હૈ ને, અશરીરી સિદ્ધ ભગવાન ગાતે. દેખો એમાં પરમાત્મા સશરીરી અરિહંત કેવા, અભી મેં વાક્ય પઢ્યા હતા ને, અરિહંત ભગવાન સશરીરી હૈ, ક્યુકી મુનિરાજ થે પહેલે, તબ તક ઉસકો જો છદમસ્ત થે, છદમસ્ત ને કેવલ જ્ઞાન નહીં હુઆ થા, ઉન્હી મુનિરાજોં કો જો મનુષ્ય પર્યાય કે જીવ હૈ ઉનકો કેવલ જ્ઞાન હો ગયા, તો કે બહાર દિખને મેં કોઈ અન્ય હો જાયેગા ક્યા ઉનકા? ખ્યાલ મેં હૈ ના? તો વહી જો મનુષ્ય પર્યાય કે જીવ હૈ મુનિરાજ હૈ ઉન્હી કો કેવલ જ્ઞાન હુઆ, તો શરીર તો હૈ વહાં પર, એની શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર સંકેત છે. व्यवहार संकेत में श्रद्धावान परमात्मा केवा होय एनी व्याख्या छे। परमात्मा ना शरीर ने रोग न होय, रोग होय सॉरी कहाँ गया, शरीर होय, त्रिकाल ज्ञान होय, अनंत आनंद होय, शरीर होवा छता इने रोग न होय, ये बात है। शरीर है परंतु रोग नहीं है, ना ही उसमें कोई भूख लगती है, ना शुदा होती है, ना कोई केवल ज्ञान होने पर कोई उपसर्ग भी नहीं है। जिनको उपसर्ग अवस्था में केवल ज्ञान होता है, आपने सुने होंगे बहुत सारे उपसर्ग केवली जिसको कहते हैं, परंतु केवल ज्ञान होते ही उसकी महिमा ऐसे, वहाँ कोई उपसर्ग नहीं रहता। इंद्रादि आकर तो उनकी पूजन वगैरह कर देते हैं, उपसर्ग का निवारण हो जाता है। मुमुक्षु अहिया केवल ज्ञान छे माने, अहिया रोग छे माने। अब ये जो वहाँ की क्या मान्यता थी पहले की उनकी वो बता रहे ना, बिल्कुल विरुद्ध, तद्दन तत्वनो विरोध छे। ये भी बधी अशाता रही जाए तो इन्हें पवित्रता न होती, यानी यदि ये केवल ज्ञान होने पर भी ऐसे शरीर में कुछ बात रह जाए तो पवित्रता कहाँ रही उनके, ख्याल में आई बात। और केवल ज्ञानी को ऐसा मानना ये उनकी सबसे महान अभिनय है। केवल ज्ञानी को वो भूख सहित मानना, रोग सहित मानना, ये उनकी महान अभिनय है। अने इने जीवनी दशा पण नहोती एनु भान नथी। एने संप्रदाय में तो मोटो विरोध छे ने, भगवान ने रोग हतो, दवा लाव्या, बधु कर्यु, बधी कल्पित वातु छे। पूर्ण आत्मदशा ज्यां पूर्ण आनंद प्रकट थाय एना शरीर ने अशातानो एटलो उदय एटलो न होय के जेमा रोग आवे। क्या कहते हैं, अशाता को उदय नहीं ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अशाता साता का दोनों का उदय 14वें तक है और 13वें में भी साता असाता का उदय पलटता रहता है, परिवर्तन वाला। ये अब सुबह यही बात चल रही, बहुत उस पर बहुत चर्चा चल रही है। तो कहते हैं अशाता का ऐसा उदय नहीं है, यानी उसमें वो नहीं के बराबर अशाता है, उसका नाम मात्र अशाता रहेगी, उसका अनुभाग इतना हीन हो गया है कि नहीं के बराबर हुआ है, और ऐसे भी उसमें कोई रोग उत्पन्न करने की शक्ति उसमें है ही नहीं है, यही कह रहे हैं यहाँ पर। अशातात्मो एटलो उदय होय न, एटलो न होय कि जेमा रोग आवे, यानी उसका अनुभाग जो फलदान शक्ति तो ऐसी घट गई है। अशातानी प्रकृति होय छे, क्या कहा, देखो गुरुदेव को भी इसका अभ्यास था करना नियोग का, नहीं तो आजकल किसी को बताने जाए कि इनको भी अशाता का उदय होता है तो सब दौड़ मारेंगे। पण ये तो मोटा दरिया में जेम चपटी राख नाखो एवो अशातानो रचकणो होय छे। क्या कहा, अपनी भाषा में देखो, ये हमने एक पोटेशियम परमैंगनेट लिया और एक ग्लास में डाला तो कैसा वो डीप कलर आ गया ना उसमें, और एक बहुत बड़े हाउस में डाला वो, और उसमें से एक डाइल्यूटेड पानी लिया वो हमने समुद्र में जाके डाला, कौन सा वो पैसिफिक महासागर तुमको मालूम है उसमें, तो वो सब उसमें घुल गया। तो उसमें हमने फिर उसमें से एक ग्लास पानी निकाला तो उसमें उसके रचकण है कि नहीं है, है। अरे वो तो पता भी नहीं लगा है कि नहीं है, परंतु है वो। ऐसे ही यहाँ लेना, क्या लिखा, मोटा दरिया में जेम चपटी राख नाको, चपटी नहीं वो चिमटी ना, उसको चपटी कहते हैं, अच्छा मराठी में कहती चिमुट भर। एवं अशाताना रचकणो होय छे, परम पवित्र आत्मा जहाँ पूर्ण थयो एना शरीर परम औदारिक होय। केवल ज्ञान होने पर उसके शरीर को परम औदारिक शरीर कहते, एने रोग न होई शके। रोग जाने छे एने परमात्मा नी खबर नथी, यानी जो परमात्मा को रोग मानता है, रोग होता है ऐसा जो मानता है, उसको परमात्मा के स्वरूप की बात पता नहीं है। मुमुक्षु एने अघाती कर्मों नु ज्ञान बराबर न थयुं, अघातीनो नहीं निर्मल पर्यायनु पण नहीं। पूर्ण निर्मल होय तो कर्मनो रस केटलो घटी जाय एनी खबर नथी। क्या कहना चाहते हैं, जब जो ऊपर के गुणस्थानों में जीव चढ़ता है सम्यक तो होने के पश्चात, तो अशुभ कर्मों का रस यानी अनुभव घटता चला जाता है, बहुत अधिक अधिक अधिक, और वो प्रति समय अनंत गुणा घटता घटता चला जाता है। उसकी बात कल करेंगे, अभी हम ये अघाती की बात यहाँ कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया ना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।